श्रीमद् भागवतम 3.33.3। सो प्रभु जी लाल
माताजी माताजी फॉर अ मिनट
Thank you so much, Mamta Mataji, for the very warm welcoming of devotees. And we can see by the amount of callers today, the excitement in everybody's mind to hear His Grace Lal Govind Prabhu. Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 6, text 42, Atava yogi nameva kule bhavati dhimatam. Etaddi durlabataram loke janmayadi drisham. Or, if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. So, His Grace Lal Govind Prabhu's birth can be compared to this verse. He is born in a very traditional, a wealthy Vaishnava family. His father, His Grace Lokitaksha Prabhu, and his mother, Mangal Prabha Devi Dasi. So both are disciples of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. Prabhu was raised in a very Krishna-conscious way, attending Mangalaratis in the Juhu temple, hearing and chanting the holy names and hearing the Bhagavat and Bhagavad Gita Katha. So his brother and sisters are also practicing Krishna consciousness for the past 20 years. So Prabhuji has been giving lectures all around the world, in Europe, Singapore, in East, in the South Africa, in America, for a very long time. He has about 1.2 million views in YouTube. He has been very successful in taking the mass of people who are misled by the professional Bhagavatam readers. And the very mass of people, they were attracted to the musical and the very sweet expositions of Bhagavatam, not caring what is the truth. But we have Lal Govind Prabhu, a true preacher coming in the parampara, getting all those people back by his wonderful and charismatic lectures. Prabhuji also hails from a very wealthy family. But we can see that these two verses from Bhagavad Gita support such a rare birth in this world. And we are very, very happy and very, very fortunate to have you in our call, Prabhuji. Thank you so much. Please accept our humble obeisances and please take over the call. Thank you.
Hare Krishna. Dhanyavad Mataji. आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सब भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ स्मरण कराने का, श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे कल ही पता चला कि इस प्रकार से रोज कॉन्फ्रेंस में भागवत कथा, भागवत प्रवचन हो रहे हैं। तो आज का श्लोक है कंध 3 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 3 3.3.3। श्लोक बहुत सुंदर है, मैं इसका रिसाइटेशन करता हूँ, आप भी प्रयास कीजिएगा। समाहुता भीष्मक कन्याये श्रिय सवर्णे नभुभूषये शाम गंधर्व वृत्या मिषताम सुभागम जहने पदम मूल निदध सुपर्णः। ऐसी भक्ति दान स्वामी श्री प्रभुपाद इस श्लोक का अनुवाद करते हुए कहते हैं, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। श्री प्रभुपाद इस श्लोक को समझाते हुए परपोट में लिखते हैं, राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा रूप दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। क्योंकि लक्ष्मी भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दुल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत को ले जाए। इस घटना की स्पष्ट विवेचना भागवत के दशम स्कंध में की जाएगी। इस प्रकार श्री प्रभुपाद तात्पर्य में ये समझाते हैं। प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाहमिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत की इस श्लोक में श्रीपाद मैत्री मुनि महात्मा विदुर जी को भागवत का ज्ञान देते हुए ये बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में इस प्रकार का प्रसंग है कि महात्मा विदुर जब हस्तिनापुर से निकले तो भारत के अनेक तीर्थाटन में तीर्थों में भ्रमण करते करते ब्रज वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में महात्मा विदुर जी का मिलन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सखा उद्धव जी के साथ हुआ। तो महात्मा विदुर ने उद्धव जी को अनेक प्रश्न पूछे, मूलतः भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार के बारे में पूछा गया। इसका उत्तर देते हुए उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बड़े संक्षिप्त में महात्मा विदुर को सुनाते हैं और उसी प्रसंग के अंतर्गत उद्धव जी के द्वारा उच्चारित यह श्लोक है। उद्धव जी महात्मा विदुर जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राजा भीष्मक की कन्या को इस प्रकार से अपहरण करके आए जैसे विनीता के पुत्र गरुड़ देवताओं के हाथों से अमृत का कलश लेकर आए थे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत के दशम स्कंध में यह प्रसंग बहुत सुंदर विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में ऐसा वर्णन है, कुंडिनपुर में जन्म हुआ था रुक्मणी का और उनके पिताजी का नाम था राजा भीष्मक। राजा भीष्मक की यह बहुत सुंदर कन्या थी और उनके अन्य तीन चार पुत्र थे और उसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मी। जब रुक्मणी 16 साल की हुई तब उनके पिता राजा भीष्मक ने रुक्मणी से कहा कि बेटा बेटा अब हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। आप बताओ कि आपको कैसा वर चाहिए। हमारे वैदिक परंपरा में ऐसी प्रणाली है कि जब कोई कन्या बड़ी होती है और कन्या बुद्धिमान होती है तो माता पिता उनसे सलाह परामर्श करते हैं कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। राजा विश्वक ने पूछा, बेटा तुम्हें कैसा वर चाहिए? तब रुक्मणी ने कहा कि पिताजी आप यदि मुझे पूछो तो मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। राजा विश्वक को रुक्मणी का प्रस्ताव अच्छा लगा और कहा, बेटा ठीक है, तुम्हारी इच्छा कृष्ण से विवाह करने की है तो निश्चित हम आपका विवाह कृष्ण से कराएंगे। राजा भीष्मक ने यह बात अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी को सुनाई। रुक्मी को भी अच्छा लगा, ठीक है हमारी बहन चाहती है कृष्ण से विवाह करना तो हम करा लेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन की बात, रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी जरासंघ के साथ बैठा था। जैसे तैसे रुक्मी जरासंघ के साथ अपनी मित्रता कर लिया था। एक दिन बात ही बातों में रुक्मी के मुख से यह निकल गया कि जरासंघ, मित्र हमने हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ तय करने के लिए सोच रहे हैं, तो जब विवाह होगा तो आप आओगे ना? तुरंत जरासंघ ने कहा कि संसार में तुम्हारी बहन के साथ विवाह करने के लिए और कोई नहीं मिला, तुम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ कराओगे? अरे वो तो कायर है, वो तो छलिया है, वो तो कपटी है। जरासंध कृष्ण को नहीं चाहते थे, आप सब जानते ही हैं। कारण यही था कि जरासंध की दो कन्या थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति, और जरासंध ने अपनी इन दोनों कन्या का विवाह कंस के साथ कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया और अस्ति और प्राप्ति दोनों विधवा हो गई, यह बात जरासंघ को अच्छी नहीं लगी और जरासंघ भगवान श्री कृष्ण का दुश्मन बन गया। और इसलिए जरासंघ ने मथुरा के ऊपर बहुत बार चढ़ाई की और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने मिलकर जरासंघ की सेना का विध्वंस कर दिया, परंतु जरासंघ को छोड़ दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान जरासंघ के साथ युद्ध करते हुए उसे रण को छोड़कर भाग गए और द्वारिका में जाकर रहने लगे। और इसी बात को लेकर जरासंघ रुक्मी को कहता है कि वह कृष्ण तो रण छोड़ है, कपटी है, कायर है, कृष्ण का बैकग्राउंड तुमने नहीं जाना, बचपन में ब्रज में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों को परेशान ही किया है, तुम अपनी बहन का विवाह रुक्मी कृष्ण के साथ मत कराओ। तब रुक्मी ने कहा कि जरासंध तो तुम्हारे नजर में कोई अच्छा वर है? रुक्मी ने कहा, हाँ एक बहुत सुंदर सुशील गुणवान वर मेरी दृष्टि में है। बोले कौन? बोले उसका नाम है शिशुपाल। बोले तो ठीक है, हम हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं शिशुपाल के साथ तय करेंगे। बहुत जल्द रुक्मी शिशुपाल के पास गया और अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। धीरे धीरे विवाह के दिन निकट आए, मात्र दो दिन की देरी थी और रुक्मणी के मन में एकमात्र कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा थी। केवल दो दिन बचे हैं, विवाह की घड़ी निकट आ चुकी है, रुक्मणी से रहा नहीं जा रहा है। उसी समय रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। यह ऐसा पत्र है, इस संसार में लोग पत्र तो लिखते हैं, प्रेम पत्र जिसे हम लव लेटर कहते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड का प्रथम लव लेटर, इस ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम पत्र देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को लिख रही हैं। और हमारा परम सौभाग्य है, रुक्मणी ने उस पत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो जो लिखा वह सारी बातें एज इट इज कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में रखते हैं। आज संक्षिप्त में रुक्मणी का वह पत्र मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा जो भगवान श्री कृष्ण को लिखते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखती है और वह पत्र अपने एक ब्राह्मण को देती है और वह ब्राह्मण बहुत तेज गति से पत्र लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में उस ब्राह्मण का स्वागत करते हैं। भोजन सेवा पूजा इत्यादि करने के बाद उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपका यहाँ पर आने का कारण। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुंडिनपुर से आया हूँ, राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं तो कोई रुक्मणी को जानता नहीं हूँ, न तो राजा भीष्मक को जानता हूँ, और उन्होंने पत्र भेजा है। भगवान ने सोचा कि ये स्त्री के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। उस ब्राह्मण को ही कहा कि आप एक काम कीजिए, रुक्मणी ने सोचा आपको सोच समझ कर भेजा है कि आप उनके निकट के पार्षद हो, तो आप ही इस पत्र को पढ़ो, मैं इसे सुनूंगा। तो वह ब्राह्मण उस पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र में लिखा है जो बात सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत में लिखते हैं। श्री रुक्मणी उवाच, श्री रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शुणवतां ते निर्वेश कर्ण निवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभम वैयच्युता विशति चे तम पत्रपम में। रुक्मणी के पत्र का ये प्रथम श्लोक है। रुक्मणी कहती है कि कृष्ण, मैं राजा भीष्मक की कन्या हूँ और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करा रहा है। रुक्मणी ने कहा, कृष्ण मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती हूँ, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जब इस प्रकार से पत्र में लिखा तो भगवान कृष्ण के मन में प्रश्न हुआ, और प्रश्न जायज है। मानो कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, तुम मुझसे इतना चाहती हो, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, परंतु इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करने के लिए कुछ बेज, कुछ आधार होना चाहिए। रुक्मणी, मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे कभी देखा नहीं, न तो हमारी फोन में कभी बातचीत हुई, न फेसबुक पे बातचीत हुई, न व्हाट्सएप, न ट्विटर, न हम कभी बस स्टॉप पर मिले, न कभी नहीं, न तो कभी हमने आपका फोटो देखा, ना आपने हमारा कोई फोटो देखा। जब हमारा आपस में कोई आदान प्रदान नहीं, फिर भी आपका मुझसे इतना प्रेम कैसे? बात सही है, इस संसार में किसी से प्रेम करने के लिए कोई आधार होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर दृष्टांत देता हूँ कि मानो एक पिता अपने पुत्र से कहे, बेटा हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखकर आए हैं, उनके साथ विवाह कराएंगे, तुम उनसे प्रेम करना शुरू कर दो। तो बेटा कहेगा ना, पिताजी वो लड़की कौन है, वो कहाँ रहती है? तो पिताजी कहे मानो, अरे तुम छोड़ो ये सब बात, तुम उनसे प्रेम करो। तो वो लड़का कहेगा ना, पिताजी उनका एड्रेस तो दीजिए। बोले, एड्रेस छोड़ो, तुम प्रेम करो। पिताजी उनका फोन नंबर तो दीजिए। पिताजी कहे, छोड़ो, तुम उसे प्रेम करो। तो जब उस लड़की का फोटो नहीं, एड्रेस नहीं, फोन नंबर नहीं, तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम करने के लिए कोई आधार चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से मानो पूछा कि रुक्मणी, हम लोग इसके पहले न कभी मिले हैं, न हमारी बातचीत हुई, फिर भी तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हो, कैसे करती हो, ये प्रेम का कारण क्या है? तब रुक्मणी ने अपने पत्र में प्रथम श्लोक में कह दिया, कृष्ण ये बात सच है कि मैंने आपको जीवन में कभी देखा नहीं है, और न तो मेरी आपसे कभी बातचीत हुई है। कृष्ण, न तो मैंने आपको देखा है, न आपसे कभी बातचीत हुई है, लेकिन हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत बहुत सुना है। मेरे राज्य में सुखदेव वेदव्यास जैसे बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, तो उन महात्मा के चरणों में बैठकर, कृष्ण मैंने आपकी कथा सुनी है। रुक्मणी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, हे भुवन सुंदर कृष्ण, इस जगत में परम सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं, परंतु मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। और बार बार आपके बारे में सुनते 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 मेरा मन अब निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला रहा है। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि रुक्मणी एक कुलवती नारी के लिए इस प्रकार पराये पुरुष को पत्र लिखना ठीक बात नहीं है। तब रुक्मणी अपने पत्र में दूसरे श्लोक में कहती है, कात्वा मुकुंद महति पुलशील रूप विद्या वयो द्रविणदा मबिरात्मतुल्यम् धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरलो कमनोभिराम। जब कृष्ण ने कहा रुक्मणी एक सज्जन एक कुलवती नारी के लिए किसी पराये पुरुष को इस प्रकार पत्र लिखना ये अच्छी बात नहीं है, तब रुक्मणी ने बहुत सुंदर पत्र में दूसरे श्लोक में कहा कि हे मुकुंद हे कृष्ण, सच कहूं तो मैंने 1000 बार कलम उठाई और 1000 बार कलम रख दी कि मुझे पत्र नहीं लिखना है नहीं लिखना है, परंतु कृष्ण इसमें मेरा दोष नहीं है। इस संसार में ऐसी कौन सी नारी है, इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी एक बार भी दृष्टि आपके गुण रूप और लीला के ऊपर चली जाए तो आपको प्राप्त किए बिना रह सके। ये बात सत्य है, इस संसार में हमारा मन संसार की वस्तु और व्यक्ति के प्रति तब तक लोभित होता रहेगा या इस संसार में हमारा मन संसार की वस्तु के प्रति तब तक आसक्त रहेगा जब तक हम भगवान कृष्ण को श्याम सुंदर को ठीक से समझ नहीं लेते हैं। जिस दिन कृष्ण का रूप समझ में आ गया, जिस दिन कृष्ण का गुण समझ में आ गया, जिस दिन कृष्ण की लीला और नाम की मधुरिमा समझ में आ गई, उस दिन हम संसार के प्रति अनासक्त होकर कृष्ण को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकते। रुक्मणी ने यही कहा, हे कृष्ण, इस संसार के लोग इस संसार के व्यक्ति तो समय आते ही उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, संसार के लोगों के रूप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके गुण रूप लीला चिन्मय है नित्य है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो इतने सुंदर इतने गुणवान इतने सुशील आपके गुणों के ऊपर जिसकी दृष्टि चली गई वो आपको प्राप्त किए बिना कैसे रह सकती है। कृष्ण मेरा दोष नहीं है, आप इतने सुंदर हो कि न चाहते हुए भी मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। आगे रुक्मणी कहती है, तन में भवान कलु वृत्त परिरंग जायाम आत्मर्पितश्च भवतो विभो विदेही। हे कृष्ण, कृष्ण मैंने तो इस जन्म में मेरा शरीर आपको प्रदान कर दिया है, कृष्ण इस जन्म में मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ, अब निर्णय आपके हाथों में है। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, हे कृष्ण, चाहे मुझे गाढ़ आलिंगन देकर सुख देना है तो सुख दो, या मुझे तड़पा तड़पा कर दुखी करना है तो दुखी करो, चाहे मुझे आप मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा निर्णय सुन लीजिए कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपका सेवक आपका दास बनकर रहूंगा। ये है भक्त का भाव। रुक्मणी के मन में शंका उठी कि कृष्ण पूछ सकते हैं कि तुम में क्या गुण है। मानो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहे कि रुक्मणी चलो मैं तुमसे विवाह कर लू, मैं सोचू तुमसे विवाह करने के लिए, परंतु तुम्हारे अंदर गुण क्या है। तब रुक्मणी कहती है, रुक्मणी अपनी नम्रता प्रस्तुत करते हुए कहती है, पुरतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचनादि विरलं भगवान परेश। रुक्मणी कहती है कि कृष्ण, ये नम्रता है रुक्मणी की, कहती है कृष्ण इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये जन्म में तो मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि रुक्मणी इस संसार में परम सुंदर स्त्री है, परंतु अपनी नम्रता दिखाते हुए कहती है कि न तो मुझ में कोई रूप है न गुण है, कृष्ण इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, हाँ लेकिन पूर्व जन्म में यदि मैंने गांव में कुएं बनाए हो, यज्ञ किए हो, नियमों का पालन किया हो, व्रत किया हो, गुरु देवता और ब्राह्मणों की पूजा की हो, इन सब इन सारे पुण्य का फल हे परमेश्वर आपको प्राप्त करने में लग जाए, मैं यही निवेदन, मैं यही भावना करती हूँ। मानो कृष्ण कहे तुम्हारे भाई और पिता विवाह तय कर चुके हैं और दिन भी नक्की हो गया है, इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। तब रुक्मणी कहती है हे कृष्ण, हे अजीत, विवाह कल होने वाला है और मुझे आप पर भरोसा है कि आप यहाँ पर आकर मगध नरेश, शिशुपाल, जरासंग आदि को परास्त करके मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लेकिन मैं कैसे आपको ले जाऊं। तब रुक्मणी प्लान बताती है कि कृष्ण हमारे कुल में ऐसी परंपरा है कि जब कोई कन्या विवाह मंडप में जाती है तो सर्वप्रथम देवी माता की पूजा करनी होती है। रुक्मणी प्लान दे रही है कि जब मैं अपनी सखियों के साथ देवी माता की पूजा करने जाऊंगी और पूजा करके जब मैं वापस लौटूंगी तब आप आइएगा और मुझे वहां से लेकर जाइएगा। हाँ कृष्ण, उस समय जरासंघ अपनी पूरी सेना को लेकर खड़ा होगा, मगध नरेश, शिशुपाल अपनी पूरी सेना को लेकर खड़ा होगा, रुक्मी अपनी पूरी सेना को लेकर खड़ा होगा, लाखों की मात्रा में सैनिक खड़े होंगे, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से सुरक्षित लेकर जाओगे। रुक्मणी अंत में कहती है कृष्ण ये मेरा निवेदन है और मेरा अंतिम निर्णय यह है कि मैंने मेरा भाव बता दिया, अब निर्णय आपके हाथ में है, यदि आप आए तो बहुत अच्छी बात है और कृष्ण आप नहीं आए तो इस जन्म में तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, इस जन्म में आप नहीं मिले तो मैं और व्रत करूंगी, तपस्या करूंगी, साधना करूंगी, अगले जन्म में तो मिलोगे, अगले जन्म में भी नहीं मिले तो मैं पुनः तपस्या करूंगी, साधना करूंगी, तब करते करते शरीर को सुखा दूंगी, उसके बाद वाले जन्म में तो मिलोगे। कृष्ण जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक मैं तपस्या करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो कृष्ण मात्र आपके साथ। इस प्रकार का भाव देवी रुक्मणी का, जैसे मारवाड़ की मीरा ने भी कहा कि संसार में ऐसे वर से विवाह करके क्या करूं जो आज है और कल मर जाए, मैं तो विवाह करूं मेरे गिरधर गोपाल से जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। तो भक्त का ये भाव है जैसे शरणागति के लक्षण में है, जैसे शुद्ध भक्ति की व्याख्या में रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य कोई अभिलाषा नहीं, एकमात्र अवश्य रक्षी दे कृष्ण विश्वास पालन, एकमात्र विश्वास है कि भगवान आएंगे मुझे लेकर जाएंगे, इस प्रकार का विश्वास देवी रुक्मणी में था। और ये विश्वास, ये भाव, ये शरणागति, ये प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और कल ही के दिन रुक्मणी का विवाह होने जा रहा था, केवल एक रात बाकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ निकाला, ब्राह्मण को रथ पर सवार किया, कृष्ण रथ पर बैठे और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान कृष्ण द्वारिका से महाराष्ट्र में कुंडिनपुर जाने के लिए निकल पड़े। विदर्भ देश, विदर्भ नगरी में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े। कृष्ण अपने रथ के घोड़ों को तेज गति से दौड़ा रहे हैं, मानो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि आज तक ये रथ अर्जुन की सेवा में, पांडवों की सेवा में, अन्यों की रक्षा के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने रथ के घोड़ों को कहते हैं कि हे मेरे रथ के अश्वो, हे मेरे घोड़ो, आज मेरी इज्जत का सवाल है क्योंकि आज मैं अपने लिए विवाह करने जा रहा हूँ। उस रथ के घोड़े तेज गति से दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते उस एक रात बीतते ही गुजरात द्वारिका से महाराष्ट्र में विदर्भ देश में पहुंचे जहां पर रुक्मणी का विवाह होने जा रहा था। रुक्मणी के प्लान के अनुसार रुक्मणी सखियों के साथ उस देवी माता के मंदिर में पहुंच चुकी है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं और देवी माता को प्रणाम करके रुक्मणी वापस लौट रही है और उसी समय खबर आ गई कि कृष्ण इस गांव में आ चुका है। तो जरासंध ने अपनी सेना को तैनात कर दिया। शिशुपाल ने, मगध नरेश ने, रुक्मी ने, इन सब ने अपनी अपनी सेना को तैनात कर दिया और आदेश दे दिया कि कृष्ण यहाँ पर निकट आ चुका है, जिस किसी को भी कृष्ण दिखाई दे उसे तुरंत मार देना। इस प्रकार लाखों लोग अपने हाथों में शस्त्र लेकर बिल्कुल सज्जित होकर खड़े हैं और रुक्मणी धीरे धीरे देवी माता के मंदिर से आगे बढ़ रही है। कहते हैं रुक्मणी के एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे हैं कि कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे लेकर जाएंगे। युगायतम निमिषेणम चक्षुषा प्रावुषायतम, इस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। धीरे 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 रुक्मणी आगे बढ़ रही है। जैसे ही रुक्मणी वहां उस देवी माता के मंदिर के सीढ़ी के पास पहुंची, उसी समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण अपना दिव्य रथ लेकर उस लाखों की सभा के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए तो प्रकाश पुंज जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में प्रकट हुए हो वैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ और कुछ देर के लिए उन लाखों लोगों की आंखें बंद हो गई। कोई समझ नहीं पाया कि कौन आया, कहां से आया, क्या किया। भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मणी को अपना हाथ दिए, रुक्मणी कृष्ण का हाथ पकड़े और रुक्मणी को अपने रथ पे बिठाकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां से वैसे ही निकल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वनराज केसरी सिंह, जैसे वन का राजा सिंह हजारों सियारों के बीच में से अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है और सारे सियार हाऊ 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 करते रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण रूपी सिंह रुक्मणी के हाथ को पकड़कर इन लाखों सेनाओं के बीच में से वैसे ही लेकर निकल गए और सारे सैनिक चिल्लाते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। जब कृष्ण रुक्मणी को लेकर चले गए और फिर आगे तो कथा है कि सबकी आंखें खुली और देखा कौन आया, कहां से आया, रुक्मणी को कैसे लेकर चला गया। तब सब लोग कृष्ण का पीछा करने लगे कृष्ण को मारने के लिए। वहां बलराम जी को पता चला, बलराम जी आए और युद्ध हुआ। कुल मिलाकर अंत में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका में आए और कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। वैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में अनेक गोपियों के साथ रासलीला किए, परंतु रुक्मणी के साथ प्रथम लीगल विवाह भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में बहुत सुंदर तरीके से हुआ। तो इस श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं कि राजा भीष्म की कन्या को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। अब ये हुई कथा। इस कथा के पीछे सिद्धांत क्या है, इस कथा के पीछे हमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल क्या समझना है, हमारे जीवन में कौन सी बात उतारनी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के हाथ को पकड़कर विदर्भ देश से द्वारिका में अपने धाम में लेकर चले गए। यदि हम भी रुक्मणी की तरह चाहे कि हमारे जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए और हमारे हाथ को पकड़कर अपने धाम वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में हमें लेकर जाए, तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमें रुक्मणी ने जो किया है वह करना होगा। जैसे रुक्मणी ने अपने श्लोक के अपने पत्र के प्रथम श्लोक में कहा, हे कृष्ण, कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है। जैसे हमने भी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखा नहीं है, लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, या हम यदि चाहे कि कृष्ण हमें हमारे हाथ को पकड़कर हमें वैकुंठ लेकर जाए, तो जैसे रुक्मणी ने कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन स्वं दर्शुणवतां ते, जैसे रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं था, मैंने आपके बारे में बार बार सुना था। ये सत्य है, इस संसार में हम किसी के भी बारे में बार बार सुनते हैं तो उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो फिर भगवान के विषय में क्या कहना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण प्रेम। इस संसार में हम लोग तब तक फंसे हुए रहेंगे जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, और भगवान से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं। और भगवान के बारे में बार बार सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है, इसका ज्वलंत प्रमाण है आज का श्लोक, और वो है देवी रुक्मणी। रुक्मणी ने बार बार कृष्ण के बारे में सुना और कृष्ण से प्रेम हो गया। हमें भी बार बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण की लीला के बारे में हमें बार बार सुनना चाहिए, जिससे हमें ग्रेजुअली भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति का बीज तो मिल गया है, लेकिन इस बीज को फलीभूत करने के लिए, इस बीज को उगाने के लिए, इस बीज को बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन जले करे ये सिंचन, हमें रोज कीर्तन सिंचन करना होगा, और वह सिंचन है श्रवण और कीर्तन। प्रमुख रूप से है श्रवण, भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला कथा का श्रवण। श्रवण सुनने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए बार बार हमें सुनने का आग्रह रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद जब भारत से अमेरिका आ रहे थे, उस जलदूता मालवाहक जहाज में श्री प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए। उस समय के लिए प्रभुपाद नर्वस भी हो गए, परंतु उस समय प्रभुपाद ने एक भजन लिखा, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अध मेरे प्रति। उस भजन में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अमेरिका जाकर जीवों को पवित्र करना ये मुझ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ श्रीमद भागवत में ये शक्ति है। श्री प्रभुपाद ने उस भजन में ये कोट किया, शुणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन निधि अंतस्थो ही भद्राणी विधु नोति सुहत्सताम। बोले भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है, यदि कोई व्यक्ति इसे शुणवताम सुनता है तो भगवान स्वयं उस जीव के हृदय को साफ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, और उस पवित्र हृदय से एक ना एक दिन भगवान से प्रेम हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्था की स्थापना कर रहे थे, तो इस इस्कॉन संस्था का बेस बनाए श्रीमद भागवत, और प्रभुपाद की आज्ञा रही कि हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन डिवोटीज है, ये प्रतिदिन सुबह श्रीमद भागवत का श्रवण करें, शाम को भगवद गीता का श्रवण करें, और रोज हरिनाम का जाप करें। तो इसी अनुपात में हम सब भक्त हरिनाम का आश्रय लेकर प्रतिदिन भागवत को सुनते हैं कि जिससे एक न एक दिन भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य सर्वोच्च सिद्धि है प्रेम, और वह प्रेम उत्पन्न होगा भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर, और उसका ज्वलंत प्रमाण है देवी रुक्मणी, जो इस भागवत के तीसरे स्कंध तीसरे अध्याय और तीसरे श्लोक में उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को सुनाया गया है। तो बड़े संक्षिप्त में मैंने इस श्लोक को एक्सप्लेन किया आप सबके बीच में। वैसे इस प्रकार निराकार मोबाइल में प्रवचन करने का मेरा अभ्यास नहीं है, परंतु रामचंद्र प्रभु ने मुझे निवेदन किया था, तो मैंने प्रथम बार या दूसरी बार इस प्रकार से प्रवचन देने का प्रयास किया है। मुझे पता नहीं कि आप सबको ठीक लगाया नहीं, लेकिन ये श्लोक इस प्रकार से था और मैंने मेरे हृदय का भाव आप सबके बीच में व्यक्त किया। आप सब ने बड़े ध्यान से इसे श्रवण किया, आप सबका धन्यवाद। यदि कुछ समय हो तो मैं आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकता हूँ, भागवत गीता शास्त्र के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। लाल गोविंद प्रभु, दामोदरानंद दास ब्लूमंडल एनवाई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु बहुत प्रेमय प्रवचन जैसे होता है हर बार आपका, तो इतना सुंदर बताया आपने कि कैसे सिर्फ कृष्ण से सुन के रुक्मणी को प्रेम हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल है हम लोगों का कि हमको भी सुन के कृष्ण से प्रेम होगा होना चाहिए। और उनको और कोई इच्छा नहीं थी, अन्य अभिलाषा शून्यम जो एक अच्छे भक्त की निशानी है वो उनमें थी, ये सब है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप अभी नहीं बाद में दे सकते हैं उत्तर। तो इसको रुक्मणी अपहरण बोलते हैं, लेकिन अपहरण नहीं है, क्योंकि ये जो है रुक्मणी की सहमति से हुआ। रुक्मणी ने एक्चुअली में कृष्णा को बुलाया, तो उसको अपहरण नहीं बोल सकते। अपहरण होता है जो बिना इच्छा के किसी को उठा लिया जाए। तो ये तो एक तरह से उद्धार हो गया रुक्मणी को, क्योंकि वो एक शिशुपाल जैसे आदमी से विवाह आने वाला था। तो एक पत्र लिखने से कृष्ण जाके उसको ले आए, और द्रौपदी का एक बार सुनने से उनको उनकी लज्जा बचा ली। तो गोपियां जो इतना प्यार करती थी कृष्ण को, उनको वो छोड़ा है वृंदावन में, उनको मथुरा में क्यों नहीं लाए? वो इतने साल थी। ये मेरा प्रश्न उठता है।
मैं इसका संक्षिप्त में आपको आंसर दे दूंगा, अभी फिर विस्तार से हम प्रश्न में डिस्कशन कर लेंगे। संक्षिप्त में यही है, इसके दो पहलू हैं। इनका प्रश्न ये है कि रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण लेकर आए, द्रौपदी के पास चले गए, उनको दर्शन दिया, लेकिन ब्रजवासियों गोपियों को क्यों दर्शन नहीं दिया? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी वृंदावन को छोड़ा ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। भागवत में भी आया है, तत्र राजधानी तथा साबुत सर्व यादव भुभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हरि जो है ब्रज में नित्य रूप से रहते हैं। तो अनेकों बार शास्त्र में आया है। तो भगवान कृष्ण ब्रज में रहे, लेकिन अप्रकट रूप से रहे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, फिर प्रश्न होगा, तो अप्रकट रूप से भी क्यों रहे, गोपी को क्यों तड़पाए? तो कारण यही है कि भगवान के साथ मिलन में आनंद है, ये सत्य है कि भगवान के साथ मिलन में आनंद है, लेकिन उससे भी करोड़ों गुना आनंद भगवान के साथ विरह में है। इसलिए श्रीमती राधा रानी, सूरदास जी ने एक भजन में लिखा है, श्रीमती राधा रानी का ये भाव है, राधा अपनी सखियों से कहती है कि सखी कृष्ण जब मेरे साथ होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राधा रानी कहती हैं कि सखी कृष्ण जब मेरे साथ होते हैं तब मुझे कृष्ण में ही कृष्ण दिखाई देते हैं, परंतु कृष्ण जब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कृष्ण जब मेरे साथ नहीं होते हैं, तो संसार की सभी वस्तुओं में मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये है कि जब किसी प्रेमी का विरह होता है तो प्रेम और प्रगाढ़ बन जाता है। तो कृष्ण गोपियों का प्रेम प्रगाढ़ करने के लिए, इस विरह रस का अधिक आनंद लेने के लिए इस प्रकार की लीला की है। संक्षिप्त में इसका उत्तर यह है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हरी हरी प्रभु, थैंक यू, बहुत सुंदर। इसीलिए गोपियों का जो भक्ति है वो बहुत ऊपर है, जो रुक्मणी और बाकी रानियों की भक्ति है वो ऐश्वर्य भाव में है, गोपियों की भक्ति प्रेम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे
हरे कृष्ण,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज ब्रज गोविंदम दास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा,
नहीं ऐसे आपको प्रणाम करने के लिए मैंने कहा, ऐसे तो मिल नहीं पाए इसलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर और बहुत ही अच्छा कथा का वर्णन किया आपने प्रभु जी, धन्यवाद उसके लिए। ये भागवतम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब जो मेरे दिमाग में आता है कई बार, कि विष्णु, महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आगे आगे आते हैं। तो जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो परमात्मा के रूप में सबके अंदर है, तो प्रभु जो मतलब जो हम क्षीर सागर की भी बात करते हैं, क्षीर सागर में भी वो विष्णु वहां पर भी लेटे होते हैं, तो वो विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, राइट?
हाँ।
तो वो परमात्मा के रूप में भी आते हैं और वो वहां पर भी लेटे होते हैं, ऐसा है?
एक मिनट महाराज, क्षीरोदक्षाय विष्णु कभी लेटते नहीं है, वो लेटे हुए नहीं होते हैं। आपने कभी फोटो देखा होगा, शिल प्रभुपाद ने बनाया है, वो ऐसे खड़े हुए क्षीर, है ना?
हाँ,
तो गर्भोदक्षाय विष्णु वो है जिसके नाभि से कमल प्रकट होता है और उसके उनके कमल के अंदर ब्रह्मांड है। कारुदक्षाई महाविष्णु वो है जिनके रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं और शिरोदक्षाई विष्णु वो है जो शिर सागर में रहते हैं। ओके, तो शिरोदक्षाई विष्णु अपने स्वरूप को एक्सपांड करके परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु एक। और दूसरा, इस संसार में जब जब कोई अवतार लेना होता है तो अवतार भी शिरोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं।
ओके,
ये है। तो और आपका प्रश्न इसमें कोई?
और जब प्रलय होता है तो जो शिव जी है, ब्रह्मा है, ये सब है, तो ये सब के सब भी मतलब समा जाते हैं वापस ये गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर जाते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु के
शरीर में समा विष्णु के अंदर जाते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर जाते हैं।
अच्छा,
प्रलय जो है कारणोदक्षाय विष्णु से होता है, महाप्रलय महाविष्णु से होता है।
और प्रलय जो प्रलय है वो तीन तरह से होता है, ठीक है, राइट?
हाँ, चार प्रकार के होते हैं।
अच्छा,
श्रीमद भागवत के अष्टम स्कंध के अंत में लिखा है नैतिक नैमित्तिक, इस प्रकार से चार प्रकार के प्रलय है।
और जो हम जो प्लेनेट है मतलब जो ये गर्भोदक्षाय विष्णु की जो नाभि से जो कमल लाल निकलता है उसके अंदर ही होते हैं या उसके बाहर होते हैं ये जो हमारे मतलब यूनिवर्स जो सिचुएटेड है?
वो अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु की जो कमल की डंडी है ना, कमल लाल, उसके अंदर
ही होता है। बाहर तो बाहर क्या होता है? बाहर पानी होता है मतलब जल होता है या अंधेरा होता है या मतलब शून्य होता है नाल के बाहर?
आकाश ही समझिए आप, आकाश ही होता है बाहर।
ठीक है, थैंक यू।
जल नीचे होता है, ऊपर आकाश होता है।
ऊपर आकाश मतलब नाल के अंदर और बाहर।
जैसे आप इमेजिन कीजिए गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनकी नाभि से कमल की डंडी कमल लाल है और कमल लाल में 14 ब्रह्मांड है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में शयन कर रहे हैं तो नीचे गर्भोदक सागर है और ऊपर आकाश है।
यस,
इस प्रकार से।
थैंक यू प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज,
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद
प्रभु जी। आपको इंटरनेट पे देखा है और सुना है तो फोन में भी इतना ही मजा आ गया, आनंद आ गया पूरा। वैसे ही आपने सब सेमी एक्सप्लेन किया और कुछ इतना डिफरेंट नहीं लगा प्रभु जी, तो उसके लिए थैंक यू। एंड प्रभु जी, हम जब रुक्मणी जी ने बहुत ही जल्दी से भगवान को पूरा सरेंडर कर दिया ऐसे सुन के भगवान की कथा, तो हम में तो कितना पाप है, हम इतना सरेंडर क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि हम इतनी कथा नहीं सुनते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, बार बार जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब सरेंडर कर पाएंगे। तो जब तक हम 100% सरेंडर नहीं होते हैं तब तक तो काम नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल द्रौपदी का ले लीजिए, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी 100% सरेंडर नहीं हुई। द्रौपदी पहले भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पांडव के पास गई, यहाँ तक समाज के पास गई, अपने हाथों से अपनी साड़ी पकड़ कर रखी, और जब द्रौपदी कुंत में हुआ कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचाएगा, बस अब केवल कृष्ण का ही सहारा है, 100% जब कृष्ण को दे दिया तब जाकर कृष्ण आए। तो हमारा क्या है ना, हम 100% कृष्ण को नहीं देते हैं, अभी भी हमारा कुछ परसेंट संसार में समाज में फंसा हुआ है। तो 100% भगवान को देना चाहिए, और 100% कब होगा, जब हम स्ट्रांग साधना करेंगे, गुरु साधु वैष्णव की सेवा करेंगे और बार बार भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तब धीरे धीरे करके 100% हो जाएगा। ठीक है,
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सर, थैंक यू सो मच प्रभु जी. आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी कम्प्लीटली बट आई एम नॉट एबल टू टॉक. योर कथा वॉज वेरी वेरी नाइस एंड यू टुक अस टू द प्लेस वेर द रुक्मिणी कृष्णा किडनैप रुक्मिणी दैट हैपन्ड. वेरी स्वीट एंड वेरी फ्रॉम द हार्ट प्रभु जी एंड सो मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड रियलाइजेशंस ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन.
हरे कृष्णा प्रभु जी, लाल गोविंद प्रभु जी, प्लीज
हरे कृष्णा
एक्सेप्ट माय हमारा प्रणाम, दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए. आपने जो कथा किया बहुत सुंदर कथा किया और उसमें ज्यादातर शिक्षा भी प्रदान की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप फिर कभी भी आइए. हरे कृष्णा.
ठीक है, हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम ममता. और जैसे कि अभी ललिता जी माता जी ने बताया कि यू नो जैसे आप कथा बता रहे थे तो आप हमें उसी जगह पर ले गए और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था कि यू नो हालांकि यू नो हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं है बट फिर भी मुझे ऐसे यू नो सब कुछ जैसे मैं यू नो ऐसे वीडियो में देख रही हूँ या रियली में देख रही हूँ सामने वैसा सब नजर आ रहा था. तो इट वॉज वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच. और यू नो हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारे यू नो कॉन्फ्रेंस में आके हमें सुनाए तो हम बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे प्रभु जी. थैंक यू सो मच
प्रभु जी. हम लोग शार्लोट से है, शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना. रामचंद्र प्रभु ने बताया होगा, प्लीज यहाँ पे आइए प्रभु जी.
हाँ, रामचंद्र प्रभु ने बताया था और उनसे बात चल रही है हमारी, करेंगे.
थैंक यू प्रभु जी,
थैंक यू. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. शिकागो आते हो?
हरे कृष्णा, आप बुलाएंगे तो आएंगे.
ठीक है, आ जाना. बुलाना अभी फोन ही करता हूँ, पता नहीं आपका नंबर, लेकिन फोन नंबर दे दीजिए.
प्रभु जी ब्लूमिंगटन आए थे?
हाँ ब्लूमिंगटन आते.
मैंने क्या है कि प्रद्युम्न प्रभु से बात हुआ था, वो बोलते हैं कि शिकागो आने वाले हैं ऐसा, लेकिन पता नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं.
शिकागो में आने वाला हूँ, वहाँ हमारी बातचीत हुई हो रही है, शायद मार्च में आना होगा.
मार्च में? अच्छा, अभी मैं ये वेंसडे. हाँ
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और आपकी कथा इज लाइक अमृत के जैसा हमको लगा. और आप जैसे शीतल माता जी ने बोला कि हम आपकी कथा हमेशा ही सुनते हैं, और हमको आज रियली मतलब साक्षात्कार हो गया कि आपको लाइव सुनने को मिला, क्योंकि हमारी हमेशा से इच्छा रही है आज तक कि आपको आमने सामने सुने आपका, लेकिन कभी नहीं हो पाता. हम हमेशा आपका लेक्चर ऑलरेडी हो जाता है और उसके बाद में हम यूट्यूब पे उसको सुनते हैं, लेकिन आज हम एक्चुअल में आपको सुन सके ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी. और आप हमारे कॉन्फ्रेंस पे आए और अच्छा भागवत कथा सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. और हम इच्छा करेंगे कि आप हमेशा से आते रहे कॉन्फ्रेंस में और आपका एसोसिएशन हमको देते रहे, ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य होगा अगर आप फिर से आ पाए तो. लेकिन आप हमको पता है कि आप बहुत ही बिजी रहते हैं और आपको ये सब एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये सब करके भी आप आए, इसलिए हम आप सब आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. थैंक यू,
धन्यवाद, थैंक यू.
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा लाल गोविंद प्रभु.
हरे कृष्णा.
हाँ प्रद्युम्न बोलता हूँ.
धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी.
धन्यवाद प्रभु जी. वंश हफ्ते में एक बार भी आप ऐसे कथा कॉन्फ्रेंस में आ जाइए तो सबको सुनने का अच्छा लाभ मिलेगा.
आप आदेश दे दीजिए, आ जाऊंगा. आपके वरिष्ठ भक्तों का आदेश ही
क्योंकि हमारे पास ये नंबर में आज मैसेज आया था कि लाल गोविंद प्रभु की कथा है, तो आज सुनने का चांस मिला। मगर सब लोग, सब भक्तों की वही डिजायर है कि आप वंश हफ्ते में एक दफा भी आप आइए तो बहुत अच्छा होगा।
ये रोज होता है ये
प्रभु जी?
हाँ रोज होता है।
प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसेंस, दिस इज अभिराम सकादास कॉलिंग फ्रॉम शार्लेट। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये कॉल सातों दिन चलता है, पूरे सात भर चलता है। रोज 7:20 पे भागवत कथा शुरू होती है, 5:20 पे जपा शुरू होता है, 2 घंटे का जपा होता है, और उसके बाद फिर 7:20 पे कथा शुरू होती है, जहाँ पे रोज नए स्पीकर बहुत करते हैं। मतलब हर एक दिन एक एक को दिया हुआ है, कोई स्पीकर सोमवार के दिन बात करता है, मंगलवार के दिन बात करता है। आपको अगर एक दिन कोई अच्छा लगेगा कि जो आपको कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, तो प्लीज हमें बताइए, उसके हिसाब से हम फिर वो एडजस्ट करके आपका उसी दिन रखेंगे।
ओके ओके, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको बोलिएगा मेरे संपर्क में रहे, हम बात कर लेंगे फिर।
ठीक है प्रभु जी, मैं आपको फोन करूंगा। मैंने आपको कल के भी फोन किया था, टेक्स्ट भेजा था, तो मैं आपको वापस फोन करूंगा।
ओके ओके प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज दुलारी फ्रॉम ब्लूमिंगटन इलिनॉय, वी मिस योर एसोसिएशन प्रभु जी, और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने रुक्मिणी और कृष्णा के विवाह के संबंध में। बहुत पहले ही सुना था मैंने आपका यूट्यूब पे, लेकिन आज फिर से सुनने में उतना ही आनंद आया, और जितना सुनो उतना हर बार कुछ ना कुछ नया एडिशन लगता है। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज डू कम टू ब्लूमिंगटन। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है अभी?
प्रभु जी के पास टाइम है तो पूरा दिन प्रश्न है माता जी।
कोई प्रश्न नहीं है, कृष्णा रुक्मिणी का विवाह हो गया, अभी प्रसाद खाओ।
प्रभु जी बोलेंगे इतनी सब कथा है इंटरनेट पे, तो फिर अभी मुझे छोड़ो।
ठीक है, तो अभी रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
वैष्णवेभ्यो
नमः।
शिरोमणि कृष्ण भगवान की
जय। जय
प्रभुपाद
की। लाल गोविंद प्रभु की
जय।
राधा गोविंद मात्र की जय।